ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। श्रेष्ठों और आचार्यों की परिभाषा देते हुए इस तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को बहुत ही रहस्यमय और गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं। और हमारे पिछले सेटिंग में 25वें श्लोक से हमने ये सीखा, भगवान बता रहे हैं कि एक अविद्वान कर्मी होता है और एक विद्वान भक्त होता है, या अविद्वान बहुत से कर्मी होते हैं और बहुत कम विद्वान भक्त होते हैं। तो विपरीतवाद के द्वारा भगवान ने प्रस्थापित किया कि अर्जुन को प्रधानता किसे देनी चाहिए, विद्वत्ता को या अविद्वत्ता को, अर्जुन को कौन सी श्रेणी में जाना चाहिए, बहुवचन या एकवचन। तो अब अर्जुन मानो अविद्वान और विद्वान इन दोनों के विषय में जानने के पश्चात अब भगवान को ये प्रश्न पूछें, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कर्म और कर्म फल में आसक्ति दोनों में नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यदि आप मुझे विद्वान बनने के लिए बोल रहे हो, और विद्वान का अर्थ भगवान ने क्या दिया था, जो अनासक्त हो, अविद्वान कौन है, जो आसक्त है, विद्वान कौन है, जो अनासक्त है। तो अर्जुन ने अपनी बुद्धि से अब इसको एनालाइज करते हुए भगवान को यह प्रश्न पूछा कि भगवान क्या आप मुझे उस प्रकार का विद्वान बनाना चाहते हो जो कर्मों से और कर्मों के फल दोनों से अनासक्त रहे? डू यू वॉन्ट मी टू बिकम दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंट बीइंग हु इज डिटैच्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ वर्क एंड वर्क इन इटसेल्फ? अर्जुन का प्रश्न समझ में आ रहा है? तो इसके उत्तर में अब आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। ये उन क्लासिक वर्सेस में से है जिसमें एक श्लोक में भगवान सब कुछ बता रहे हैं। ऐसे बहुत से श्लोक हैं भगवद गीता में जिसके अंदर भगवान ने एक श्लोक के अंदर पूरी भगवद गीता का सार दे दिया। इसलिए क्योंकि भगवद गीता इस कलयुग में हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा और हो भी रहा होगा कि पूरी भगवद गीता कोई अध्ययन करने के लिए इतना इच्छुक नहीं होता, तो यदि कोई एक ऐसा श्लोक भी उठा ले और उसे भी अपने जीवन में अपना ले, जैसे आज का श्लोक है, इस एक श्लोक को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो परिपूर्णता प्राप्त हो सकती है। तो आज के हमारे चर्चा के विषय रहेंगे पिछले श्लोक से आज के श्लोक का क्या संबंध है? बुद्धि भेद, ये शब्द भगवान ने आज इस्तेमाल किया है, तो इसकी व्याख्या हम करेंगे। विद्वान शब्द की व्याख्या पुनः आज की जाएगी, युक्त शब्द की व्याख्या और समाचरण शब्द की व्याख्या। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को यह बताया था कि जो विद्वान होते हैं वो जब कुछ करते हैं तो क्या होता है, और आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किसी का शैडो आ रहा है वहां पर। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आज के श्लोक में भगवान निषेध कि यदि वो विद्वान कुछ न करें तो उसका परिणाम क्या होता है। जब विद्वान कुछ करते हैं, अब देखिए यहां पर यह समझना आवश्यक है कि केवल जो अविद्वान है, अविद्वान यदि कुछ करते हैं तो उसका तो दुष्परिणाम अवश्य ही भगवान ने बता दिया, परंतु भगवान ये भी बता रहे हैं आज के श्लोक में विद्वान यदि कुछ न करें उसके भी दुष्परिणाम हो सकते हैं जो उन्हें करना चाहिए। वॉट इंटेलिजेंट बींग्स आर सपोज टू डू एंड वेन दे डू नॉट डू, सो वॉट आर दी रिपरकशंस टू दैट। तो वो है आज के श्लोक में जो पिछले श्लोक से संबंध। तो विधि और निषेध। अब देखिए क्यों हमारे शास्त्रों में यह एक स्ट्रैटेजी यूज की जाती है, एक स्ट्रैटेजी है प्रीचिंग की। कौन सी स्ट्रैटेजी? विधि और निषेध, डूज एंड डोंट्स। ये नहीं कि शास्त्र में भगवान ने ये जो विधि निषेध बताए हैं, यम नियम जो बताए हैं, ऐसे ही भगवान के मन में आया इसलिए भगवान ने कह दिया, नहीं, जरूरत के अनुसार। अब देखिए हरे कृष्ण, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको लगी तो नहीं माता जी। तो विधि और निषेध, जैसे हमारे कार्यक्रम के पहले हम कितने अनाउंसमेंट करने पड़ते हैं, सेलफोन ये करो, सब इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। क्यों क्यों इतने इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं? क्योंकि भूल जाते हैं, हर बार अनाउंसमेंट के बाद भी भूल जाते हैं, बजने के बाद भी भूल जाते हैं। तो भगवान भी उसी प्रकार से ऐसे अनाउंसमेंट्स करते हैं शास्त्रों में। क्या अनाउंसमेंट्स करते हैं? कि क्या करो क्या मत करो। अब आप देखिए देश काल पात्र के अनुसार विधि निषेध बदलते हैं। आप भारत में यदि यात्रा करोगे तो भारत में ऐसे ऐसे जगहों पर कुछ लिखा जाता है जो पाश्चात्य देश में जरूरत नहीं लिखने की। जैसे एक टिपिकल इंस्ट्रक्शन निषेध लिखा जाता है प्लेटफॉर्म्स पर, ये थे थूंकू नहीं, है ना, यहां थूकना मना है। अब मैं जब विदेश में प्रचार करने के लिए जाता हूं तो मैंने कहीं पर किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर और पब्लिक प्लेस में कहीं पे लिखा हुआ नहीं देखा कि यहां पे थूको मत, क्योंकि वो लोग नहीं करते, इसलिए ये बात वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत में आए दिन सब जगह रोजमर्रा एक थू चलता रहता है, तो इसलिए बहुत कुछ, मैं तो केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं, और बहुत कुछ ग्रोस चीजें बोली जाती है, लिखी जाती है, क्योंकि वो देखा गया है कि ये चीजों को लोग पालन नहीं करते। तो भगवान क्यों विधि निषेध का स्ट्रैटेजी अपनाए हैं? क्योंकि यहां पर भगवान ने देखा, और आध्यात्मिक संसार में ये सब की जरूरत नहीं है। कभी स्पिरिचुअल वैकुंठ में आप ये नहीं देखोगे कि वहां पे साइन बोर्ड्स लिखे हुए हैं कि चैंट योर 16 राउंड्स आज पूरा किया कि नहीं, चार नियम पालन किए कि नहीं। वहां पर ये सब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कि सबको पता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कई बार विधि निषेध की जो स्ट्रेटेजी है हमारे स्क्रिप्चर्स में, वो एक ही पॉइंट को रीइन्फोर्स करने के लिए होती है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण मैं आपको दूं, कोई व्यक्ति किसी को कहता है यहां पर बैठ जाओ, फिर कहता है हिलना मत, दोनों का एक ही अर्थ हो गया ना, यहां पर बैठ जाओ हिलना मत, लेकिन इसमें विधि निषेध आ गया। विधि क्या है? बैठ जाओ। निषेध क्या है? हिलना मत। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ हो कि ये बैठने के बाद भी हिलता है ना, इसलिए फिर उसको रीइन्फोर्स करने के लिए बोला जाता है कि बैठ जाओ और बैठने के बाद हिलना मत। फिर अगर वो और भी कुछ करता होगा बैठने के बाद, तो वो भी फिर आगे उसको रीइन्फोर्स करना पड़ेगा कि बैठ जाओ, हिलना मत, डुलना मत, बोलना मत, जो भी कुछ आगे। जैसे भगवान ने हरिनाम के विषय में कहा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, यह है विधि। निषेध क्या है? कि नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कि इसके अलावा और कुछ मत करना, और कुछ मत करना, और कुछ मत करना। तीन बार क्या करना, क्या करना, क्या करना। कि भगवान सोचे कि पहली बार बोलते समय अगर डुलकी आ गई होगी तो दूसरी बार वापस बोलता हूं। हाँ, होता है ना। तो इसलिए तीन बार भगवान ने, और फिर वापस तीन बार क्या कलयुग में मत करो, क्या करो और क्या मत करो। तो कुछ साइंस देखिए विधि निषेध के, कुछ इंटरेस्टिंग साइंस इंडिया में देखे जाते हैं। अब ये सब बहुत आवश्यक है कई जगहों पे लिखना, हालांकि इंग्लिश बहुत फालतू इसमें लिखी हुई है, जो भी नो पार्किंग अदरवाइज टायर्स विल बी फ्लैटेंड होना चाहिए। फ्लैटेड का अलग मतलब हो जाता है। मतलब सोचिए कि इस हद तक बताना आवश्यक पड़ जाता है कि अगर आप इस विधि का पालन नहीं करोगे तो फिर उसके परिणाम क्या होने वाले। ये देखिए, नो ट्रेसपासिंग, वायलेटर्स विल बी शॉट, सर्वाइवर्स विल बी शॉट अगेन। ये सब एक्चुअल साइन बोर्ड्स हैं इंडिया में, कि अगर वो तकदीर से बच भी गया तो फिर से उसको गोली मारकर उड़ा दिया जाएगा। सोचो। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जिन्हें पुनर्जन्म में पूर्ण विश्वास है केवल वही समीप जाने का खतरा उठाएं। ओनली दोज हु स्ट्रांगली बिलीव इन रिवर शुड रिस्क गोइंग नियर, कोई जू है टाइगर की सफारी वगैरह इत्यादि वहां पर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, हरे कृष्ण। तो कई बार इस लेवल तक इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। इसका अर्थ क्या है? कि भगवान अर्जुन उस लेवल पर नहीं, अर्जुन के द्वारा भगवान जानते हैं कि ये भगवद गीता कलयुग में लोग कौन से लेवल के होंगे जो भगवद गीता उठाएंगे खोलने के लिए। तो इसलिए विधि और निषेध, ये स्ट्रैटेजी भगवान ने इस्तेमाल की है अपने शास्त्रों में। तो जो पिछला श्लोक हमने लिया उसमें विधि बताई, और आज के श्लोक में भगवान निषेध बता रहे हैं। अब भगवान ने आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वर्ड यूज किया है आज के श्लोक में। बुद्धि भेद। अब बुद्धि भेद का अर्थ यहां पर हमारे आचार्य दो बताते हैं। बुद्धि तो हम सब जानते हैं, भेद का अर्थ दो बताया गया है। एक है भेदन, जैसे कि कोई नौका है किसी समुद्र में या किसी सरोवर में और उसके अंदर छिद्र छेद हो जाए तो उसको कहेंगे भेद हो गया। तो उसकी वजह से होगा क्या, धीरे धीरे उसके अंदर पानी भरेगा और वो नौका डूब जाएगी। और एक है कि नौका में छेद नहीं हुआ लेकिन किसी ने नौका उल्टा कर डुबाया, उसको कहेंगे परिवर्तन, कि उसको जबरदस्ती डुबा दिया, छेद वेद कुछ भी नहीं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें मैं जब निरासक्त होने के लिए बोल रहा हूं या जब मैं विद्वान होने के लिए बोल रहा हूं तो मैं ये बता रहा हूं कि तुम, हरे कृष्ण, तो मैं ये बता रहा हूं कि तुम कैसे अपने उदाहरण से किसी के भी जीवन में उसकी बुद्धि भेद मत करो। या संक्षिप्त रूप में भगवान ये अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन डोंट कंफ्यूज पीपल। क्योंकि अर्जुन कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं कि गांडीव लेकर तो रणभूमि पर पहुंच गए और रणभूमि पर पहुंचने के बाद अब बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं करूंगा, तो बाकी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि अगर तुमको युद्ध नहीं करना था तो तुम आए क्यों, और आने के बाद फिर तुम ये सब लेक्चर झाड़ रहे हो कि वर्ण संकर हो जाएगा और फिर इनका आगे क्या होगा। अरे तो पहले सोचना चाहिए था तुमको। तो भगवान थोड़ा स्ट्रांगली बोल रहे हैं अर्जुन को, न बुद्धि भेदम जनये, कि जन साधारण के अंदर तुम्हारा ये जो एक्ट है, ये जो क्रिया है तुम्हारी, उनके अंदर तुम बुद्धि भेद कर रहे हो। एक तो छिद्र उत्पन्न कर रहे हो या तुम परिवर्तन कर रहे हो उनका, उनको कंफ्यूज कर रहे हो। बेसिकली अर्जुन तुम कंफ्यूज कर रहे हो, और जो विद्वान निरासक्त है उसको बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं करना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि बुद्धि भेद जो है वो तीन लेवल पर देखा जाता है। बुद्धि भेद बॉडी के लेवल पर, बुद्धि भेद माइंड के लेवल पर, और बुद्धि भेद वर्ड्स के लेवल। अब यहां पर हम अर्जुन का उदाहरण लें तो अर्जुन कौन से लेवल पर बुद्धि भेद कर रहे हैं जनसाधारण के अंदर? नहीं नहीं, बाकियों को अब तक अर्जुन का वर्ड्स नहीं सुनाई दे रहा है, एक्शंस। क्योंकि अगर महाभारत आप थोड़ा सा जानते हैं तो महाभारत में जो गीता का एपिसोड शुरू होता है, इसके पहले अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मेरे रथ को बीच में ले चलो, तो ये अर्जुन का एक्शन है। तब तक अर्जुन ने भगवान को ये नहीं कहा कि क्यों, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत, कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में। तब तक भगवान भी ये नहीं पूछे कि क्यों अचानक अभी युद्ध शुरू होने वाला, तुम दोनों सेनाओं के बीच में क्यों जाना चाहते हो। तो अर्जुन का ये जो एक्शन, भगवान कह रहे हैं बुद्धि भेद। सभी देख रहे थे, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, ये सभी देख रहे थे, यहां तक कि युधिष्ठिर महाराज वो भी कंफ्यूज हो गए। युधिष्ठिर महाराज जो पांडवों में सबसे पीस लविंग ब्रदर, युधिष्ठिर महाराज कंफ्यूज हो गए कि ये अर्जुन अभी लड़ाई शंख बज चुके हैं, लड़ाई शुरू करने के बजाय ये बीच में कहां जा रहा है? तो अर्जुन का वो जो एक्शन था बीच में रथ को ले जाना, वो कंफ्यूजिंग, वहां से कंफ्यूजन शुरू हुआ। क्योंकि अर्जुन जो बोल रहे हैं खाली भगवान को सुनाई दे रहा है, वहां पर कोई लाउड स्पीकर नहीं लगाया था कि सब लोग पूरी भगवत गीता सुन रहे हैं। तो अर्जुन के वर्ड तो बाद में आए। तो बॉडी के लेवल पर किसी व्यक्ति के एक्शंस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो किसी के एक्शंस जब कंफ्यूजिंग होते हैं तो जनता बॉडीली लेवल पर कंफ्यूज होती है। इसका कनेक्शन क्या है? When a श्रेष्ठ his actions are confusing, then the general populace get confused on a bodily level. On the mental level, when nothing is spoken, nothing is done, but the silence is confusing. एक एक उदाहरण इसका हम शास्त्र से लेंगे। When silence is confusing, then that affects on a mental level. वो मन के स्तर पर किसी के अंदर भेद उत्पन्न करता है। और ऑफ कोर्स वर्ड्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जब वर्ड्स कंफ्यूजिंग कोई बोलता है कि एक्सट्रीम या कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स, तो वो किसी को वर्ड्स के लेवल पर कंफ्यूज करता है। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? तो फिर से आज एक वीडियो है और ये वीडियो के बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि किसको क्या समझ में आया। मतलब ये वीडियो दिखाने, जो जिसने भी ये वीडियो बनाया वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता था, ये मैं पूछना चाहूंगा। तो ध्यान में रखिएगा कि वीडियो के बाद क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कि क्या मैसेज कन्वे करना चाहते थे इस वीडियो के द्वारा जिन्होंने भी ये वीडियो बनाया। तो किसके ऊपर है? बुद्धि भेद। हरे कृष्णा। तो क्या मैसेज था? कैमलिन परमानेंट मार्कर। हर एक हस्बैंड के पास एक कैमलिन पेन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मर भी जाए तो वापस पुनर्जीवित हो सकता है। यहां पे देखिए, ये जो भी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट बनाया उसमें इन्होंने बुद्धि भेद किया है। ध्यान में रखना क्या किया है, बुद्धि भेद किया है कि लोगों का भी, जैसे कि एक यहां पे बताया गया है कि ये परमानेंट मार्कर लगाने से ये क्या समझ में आ रहा है कि ठीक है, आपको अगर कैमलिन परमानेंट मार्कर को एडवर्टाइज करना है तो ये सब कुछ दिखाने की क्या जरूरत है कि बेचारा वो मर गया और वो लोग मिटा रहे हैं उसकी बिंदी, मिटा रहे हैं, नहीं मिट रही है। क्यों नहीं मिट रही है? क्योंकि वो परमानेंट है, तो उसके वजह से पति भी परमानेंट हो गया। तो इसे कहते हैं बुद्धि भेदम, कि जो जन साधारण है, अभी जैसे आप लोग जो देख रहे थे, आप लोग पूरा इन्वॉल्व किसके अंदर हो गए शुरुआत में, क्या रे बेचारा मर गया, और सभी लोग वो जो रुदाली हैं वो अब उसकी चूड़ियां तोड़ रहे हैं, ये वो उसको बोल रहे हैं कि अभी रो ये वो, तो हम भी उस भाव में चले गए ना, अब बेचारी विधवा हो गई। फिर धीरे धीरे हम कंफ्यूज होने लगे कि अरे तो कुछ और हो रहा है यहाँ पे तो, और लास्ट में तो पूरा ही कंफ्यूज हो गई कि अब देखिए कि एक जो पतिव्रता स्त्री होती है, यहां पे कंफ्यूज क्या किया है कि पतिव्रता स्त्री कोई अपने सुहाग को बचाने के लिए कैमलिन परमानेंट मार्कर यूज करना चाहिए, यह है कंफ्यूजिंग मैसेज। तो इसलिए भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि अर्जुन तुम निरासक्त होकर, तुम अनासक्त होकर ये मत समझो कि कर्म फल को त्यागने का अर्थ है कर्मों को त्याग देना, या कर्मों को, हरे कृष्ण, ये कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा। या विधि और निषेध, देखिए भगवान ने कितने 5,000 साल पहले जान लिया था कि क्या कलयुग के हाल होंगे। तो भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि कर्म फल को त्यागना कर्म को त्यागना नहीं है, और कर्म करना मतलब फल में आसक्त होना नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग, दोनों चीज में बहुत थिन लाइन है। अर्जुन इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे, अर्जुन को भगवान ये क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो फिर से हम अब जाते हैं 3 लेवल्स, बॉडी माइंड वर्ड्स। तो कंफ्यूजिंग एक्शंस में एग्जाम्पल है शास्त्रों में इंद्र और ब्रह्मा जी, कि इंद्र और ब्रह्मा जी दोनों देवता हैं और भगवान के भक्त हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिसके वजह से बाकी भक्त कंफ्यूज हो गए। क्या किया? गोवर्धन लीला में देवराज इंद्र ने पूरे वृंदावन को विध्वंस करने के लिए संवर्तक बादल भेजे। देखिए जिनको भगवान श्री कृष्ण के भक्त होना चाहिए और सहायता करनी चाहिए भगवान की लीलाओं में, वो अवरोध डाल रहे थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान के ग्वाल सखाओं को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया। तो ये जो एक्शंस इन दोनों के, ये जन साधारण में कंफ्यूजन पैदा किया। हालांकि हमारे आचार्यों ने फिर उसको क्लैरिफाई किया कि उन्होंने ये एक्शंस क्यों किए, उसके पीछे सब बहुत अलग अलग टीकाएं हैं। लेकिन एक्शंस अगर कोई देखता है, अ लेमैन जिसको कहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है कि अरे भाई जब भगवान के भक्त ही, और ऐसे भक्त जो कि भगवान के ही मिनिस्ट्री के, कैबिनेट मिनिस्ट्री के, जिनको भगवान ने अपॉइंट किया है, ब्रह्मा जी जो सबसे पहले रेसिपिएंट वेद के, जो भगवान के नाभि से पैदा हुए डायरेक्टली, वो ब्रह्मा जी, और जिन इंद्र को देवराज बना के रखा है भगवान ने, वो भगवान को मारने के लिए, उनके ब्रजवासियों को मारने के लिए सब कुछ किया, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो ये है कंफ्यूजिंग एक्शंस ऑन अ बॉडीली लेवल। फिर उत्तानपाद, ये ध्रुव महाराज के पिता, तो ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे। भागवत के चौथे स्कंद में कथा है, अपने पिता के गोद में बैठना चाहते थे, तो क्या हुआ? सुरुचि जो कि ध्रुव महाराज की सौतेली माँ, उन्होंने ध्रुव महाराज को निकाल दिया। ध्रुव महाराज बैठ चुके थे, महाराज उत्तानपाद के गोद में ध्रुव महाराज बैठ चुके थे और सुरुचि ने गोद से नीचे उतारा और ध्रुव महाराज को सुरुचि के ऊपर क्रोध आया, लेकिन सुरुचि से ज्यादा क्रोध अपने पिता पर आया कि वो चुप रहे। उत्तानापाद ने कुछ कहा नहीं। अब उनका उत्तरदायित्व तो बनता था कि दो झापड़ सुरुचि को लगाते, लेकिन वो चुप रहे। सो मेनी टाइम्स साइलेंस इज मोर डेंजरस देन वर्ड्स। तो ध्रुव महाराज उत्तानापाद की ओर देखे कि आप मेरे पिता हो, आप इनके पति हो, आप क्या कर रहे हो? चुप रहे उत्तानापाद। बहुत बार विचार चुप रहना पड़ता है। तो वो असमंजस में से कि मैं कुछ बोलूंगा तो पार्शियलिटी हो जाएगी, किसके साइड में ये वो, तो वो कंफ्यूज हो गए, बुद्धि भेदम। लेकिन उसके वजह से ध्रुव महाराज कंफ्यूज हो गए, और ध्रुव महाराज को साफ साफ क्या दिखाई दिया, उत्तानापाद का जो साइलेंस था ही वॉज फेवरिंग सुरुचि। और उसके बाद में फिर आगे वो अपने माता के पास गए, सुनीति के पास। तो ये कंफ्यूजिंग साइलेंस उत्तानापाद का। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में एग्जाम्पल है शुक्राचार्य। वामन देव अब बलि महाराज से तीन पग भूमि मांग रहे हैं। बलि महाराज ने अपना प्रण दे दिया कि ठीक है मैं दूंगा आपको, जो आप मांगो वो दूंगा। बीच में शुक्राचार्य जो कि बलि महाराज के गुरु, बलि महाराज को कहते हैं कि ये विष्णु है। अब ये तो उन्होंने सच बात कही कि विष्णु है, कुछ मत देना। तो बलि महाराज कंफ्यूज हो गए। बलि महाराज के अंदर बुद्धि भेद हो गया कि भाई जो गुरु होता है उसको तो मुझे ये सिखाना चाहिए कि कैसे मैं सब कुछ दूं भगवान को। तो पहले स्टेटमेंट में तो इन्होंने बोला कि ये भगवान है, दूसरे स्टेटमेंट में मेरे को कंफ्यूज कर दिया कि मत दो। तो यहां पर इनके जो वर्ड्स थे, इसलिए बलि महाराज ने शुक्राचार्य को रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि तुम बुद्धि भेद कर रहे हो मेरे अंदर, यू आर कंफ्यूजिंग। इसलिए यदि शुक्राचार्य का एग्जाम्पल हम कलयुग में लें, तो कलयुग में बहुत से शुक्राचार्य के वंशज हैं जो बोलते तो हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, फिर बोलते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन अपना जीवन तो मुझे समर्पित करो, है कि नहीं? ऐसे कितने कितने तथा कथित गुरु बनकर घूम रहे हैं जो बोलते हैं, भगवत गीता का श्लोक बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, और फिर बोलते हैं माम। वो माम कौन है? मैं। तो इसको बोलते हैं कंफ्यूजिंग, बुद्धि भेद। जैसे आजकल बोला जाता है ना कि साधु संत बोलते रहते हैं मोह माया को त्याग दो। साधु संत प्रवचनों में बोलते हैं मोह माया को त्याग दो, तो बेचारे जनता पूछती फिर त्याग कर करें क्या, तो साधु संत बोलते मुझे दे दो। पहले बोलते हैं मोह माया को त्यागो, तो अगर उनको पूछा जाए कि ठीक है त्याग दिया, अब ठीक है आप तुम जाओ उधर दे दो मेरे, तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो कलयुग में कंफ्यूजिंग एक्शंस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। जैसे एक टिपिकल सीन, शाम के घर का सीन मैं आपको बताता हूं कि पिताजी आए ऑफिस से, पेपर पढ़ रहे हैं, बच्चा आया स्कूल से, वो भी नहा धो के नाश्ता वगैरह करके अब अपना होमवर्क कर रहा है। तो होमवर्क करते करते पिताजी पेपर पढ़ रहे हैं, बच्चा होमवर्क कर रहा है, टिपिकल सीन शाम का घर का। तो बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। पिताजी पूछते, पेपर पढ़ते पढ़ते पूछते, क्या है? बोलो बोलो क्या है? मुझे बताया गया है यहां पे मेरे को ट्रांसलेशन करना है हिंदी में, तो इंग्लिश में लिखा है माय हेड, तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो पिताजी बोलते हैं मेरा सर, तो वो लिख देते पिताजी का सर। उसने क्या लिखा? माय हेड का हिंदी ट्रांसलेशन है पिताजी का सर। दूसरे दिन होमवर्क दिखाता है, टीचर गुस्सा होता है, शर्म नहीं आती ये ट्रांसलेशन लिखा तुमने? तो बोला क्या होता है फिर ट्रांसलेशन? माय हेड मतलब मेरा सर, ठीक है वो रब करता है, माय हेड मतलब टीचर का सर। तो वापस जब घर में जाता है तो पिताजी को बोलता है, पिताजी आपने तो मुझे गलत बताया। पिताजी वापस उसको दो झापड़ लगाते, अरे मैंने तेरे को सही बताया था। तो अब वो कंफ्यूज हो गया, इसको बोलते हैं बुद्धि भेदम। वो कंफ्यूज हो गया कि घर में आता हूं तो ये डांटते हैं, क्लास में जाता हूं तो टीचर डांटते हैं। तो उसने फिर फाइनली लिखा क्या, माय हेड एट होम मींस पिताजी का सर, माय हेड स्कूल में टीचर का सर। तो ये है बुद्धि भेदम, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो यहां अर्जुन को भगवान ये बता रहे हैं। अब दो एक्सट्रीम्स होते हैं, एक मायावादी और एक है कर्मी, मायावती ने मायावादी और दूसरे हैं कर्मी। तो ये दो एक्सट्रीम क्या है? मायावादी जो होते हैं वो बोलते हैं कि सब कुछ खत्म कर दो, कोई कर्म नहीं, कोई कर्म का फल नहीं, कोई मन नहीं, कोई मन का विकार नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई बुद्धि भेदम नहीं, सब कुछ खत्म कर दो, एवरीथिंग मेक इट जीरो, शून्यवाद भी जिसको बोलते हैं। और उसके दूसरे एक्सट्रीम है कि सब कुछ में रचे पचे रहो, कर्मी जो है सब में रचे पचे रहो, और मायावादी जो है सब कुछ त्याग दो। ये है दो एक्सट्रीम। और भक्ति का मार्ग क्या है आज जो भगवान बता रहे हैं? भक्ति का मार्ग क्या है? द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। अगर आज के श्लोक का टाइटल यदि हमें देना है तो आज के श्लोक का टाइटल क्या होगा? आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। एक इंग्लिश का कोट है, अच्छा आप इसमें से क्या समझ में आते हैं देखिए, डोंट थ्रो द बेबी अलोंग विद द वॉश वाटर। कि जब बच्चे को, छोटे से बच्चे को टब में नहलाते हैं तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि नहलाने के बाद वो टब में जो गंदा पानी अभी जो भी साबुन का पानी जो हुआ उसके साथ बच्चे को भी नाली में फेंक दिया गटर में? क्या करते हैं साधारणतः? क्या करते हैं? बच्चे को बाहर निकालेंगे ना फेंकने से पहले, मतलब पानी को फेंकने से पहले। तो मायावादी कौन है कि पानी के साथ बच्चे को भी फेंको, टब को भी फेंको? अब कई जो हैं वो तो ऐसे होंगे जो कंजूस होंगे, वो पानी भी नहीं फेंकेंगे, उसको बाद में यूज करेंगे कुछ फड़का वड़का धोने के लिए। वो कर्मी हो गए, वो उसको भी फेंकेंगे नहीं। वो तो जो कर्मी होते हैं वो टब को भी नहीं फेंकेंगे, बच्चे को भी नहीं फेंकेंगे, पानी को भी नहीं फेंकेंगे, उसको भी 10 दिन यूज करेंगे। और मायावादी तीनों को फेंको। और भक्त भगवान बता रहे हैं कि जो बैलेंस्ड होता है वो जानता है कि किसको टब से बाहर निकालना है, किसको फेंकना है। तो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं कि अर्जुन ये सीखो मैच्योरिटी क्या है, कि किस चीज से तुम्हें आसक्त होना है, किस चीज से निरासक्त होना है, किस चीज को उपयोग में लाना है, किस किस चीज को बहिष्कृत करना है या त्याग देना। तो विद्वान, आज के श्लोक में फिर भगवान ने विद्वान इस शब्द का इस्तेमाल किया, विद्वान और युक्त ये एक साथ इस्तेमाल किया। तो विद्वान इन दो शब्दों से बना है, विद का अर्थ है वेद और वान का अर्थ है धारण। तो जो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान जिसको वेद बोलते हैं, तो वेद को धारण कर कर जो अपने कार्यों को करता है वो है विद्वान। तो तुरंत विद्वान के बाद आज के श्लोक में भगवान ने कहा विद्वान युक्त सर्वकर्माणि। अब युक्त मैं श्रील प्रभुपाद के अलग अलग युक्त के अनुवाद ढूंढ रहा था फोलियो में, तो प्रभुपाद ने ये दो अनुवाद दिए। युक्त का अर्थ कनेक्टिंग और डवटेलिंग, और युक्त का एक और अर्थ उन्होंने बैलेंसिंग बताया। जैसे युक्ताहार विहारस्य, ये जो श्लोक है छठे अध्याय का, जिसके अंदर भगवान बैलेंसिंग बता रहे हैं कि आहार में कैसे बैलेंसिंग होना चाहिए, विहार में बैलेंसिंग होना चाहिए, निद्रा में बैलेंसिंग होना चाहिए इत्यादि। तो अब हम आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि कैसे तुम अपने उदाहरण से एक प्रचारक बनो, कैसे कि तुम जनता में कंफ्यूजन पैदा करना तो छोड़ दो, उनके अंदर तुमको क्या करना है, चिकीर्षु लोक संग्रह। पिछले हफ्ते का श्लोक क्या था, चिकीर्षुर लोक संग्रह, कि लोग जनता के अंदर तुम्हें ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो मैं इसके विषय में सोच रहा था, हाल ही में मुझे ये उदाहरण थोड़ा ध्यान में अच्छा लगा, खिचड़ी खाते समय मैंने ये यूज किया था। इसको कहते हैं सॉल्ट शेकर। हाँ, तो हमने जिंदगी में किया है यूज, सबके घरों के डाइनिंग टेबल पे रहता है ना, अगली बार से जब भी सॉल्ट शेकर यूज करो तो आज का श्लोक याद करना। भगवान बता रहे हैं कि प्रीचर शुड बी लाइक अ सॉल्ट शेकर। क्या समझे आप, हाँ देखिए, अब ये सॉल्ट शेकर जो होता है इसके अंदर इतना नमक भरा रहता है, लेकिन अगर आपको किसी भी कोई चीज में नमक कम है, अगर आप कुछ खा रहे हो दाल में इत्यादि में नमक कम है, तो आप जब उसको डालते हो तो जितना जरूरत है उतना ही उसमें से निकलता है। हालांकि कई बार वो ढक्कन खुल जाता है, वो अलग बात है, जो थोड़े पक्के सॉल्ट शेकर नहीं होते उनका ढक्कन खुल जाता है, सारा नमक गिर जाता है। इसलिए सॉल्ट शेकर कैसा होना चाहिए, जिसका ढक्कन टाइट हो और जितना आवश्यक है उतना ही सॉल्ट वहां से निकले। कुछ दो दिन पहले ही मैं ये सॉल्ट शेकर यूज कर रहा था तो ये उदाहरण मेरे को ध्यान में आया। प्रीचर शुड बी लाइक दैट, कि उसके अंदर पूरा माल भरा हुआ है, भक्ति शास्त्री होगा वो, उसने सारे 18 अध्याय सब कुछ एकदम कंठस्थ कर लिए होंगे, लेकिन जब वो प्रीचिंग के लिए जाता है तो प्रीचिंग के लिए उसको जितना नमक जरूरत है उतना ही निकाल के दो उसमें से, पूरी बोतल उल्टी मत करो उसके ऊपर। तो ये एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी किसका होता है, सॉल्ट शेकर का होता है, कि जितना आवश्यक है उतना ही नमक उसमें से निकलता है। अब क्या होता है कि जो मायावादी कौन है उनके अंदर इतना नमक भरा हुआ है लेकिन छेद ही नहीं है सामने, तो कितना भी हिलाओ कुछ बाहर नहीं आएगा। तो भगवान बता रहे हैं कि एक जो बैलेंस्ड प्रीचर होता है वो इसके समान। भगवान ये एग्जाम्पल नहीं दे रहे, लेकिन एग्जाम्पल मुझे उपयुक्त लगा आज के श्लोक के अनुसार, कि भगवान बोल रहे हैं कि बैलेंस्ड प्रीचर वो क्या होता है, कि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े साक्षात्कार होंगे, बहुत बड़ा वो वैरागी होगा, बहुत बड़ा वो अनासक्त व्यक्ति होगा, लेकिन जन साधारण को सिखाने के लिए उसे उसमें से केवल कुछ कुछ निकालना होगा बाहर। इसलिए आज के श्लोक के अनुवाद में आप देखिए प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावनामृत की क्रमिक वृद्धि, ग्रेजुअल प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये भगवान आज के श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि हाउ अर्जुन यू हैव टू बिकम अ बैलेंस्ड मैच्योर प्रीचर, डोंट गो टू एक्सट्रीम्स। तो अर्जुन का एक्सट्रीम क्या हो रहा था, अच्छा है रिंग तो क्या अर्जुन अर्जुन क्या बोल रहे थे एक्चुअली, कि अब सब लोग वहां पर आ गए, योद्धा आ गए, पांडवों की ओर से, कौरवों की ओर से योद्धा आ गए। अब वहां पर सभी के मन में क्या था, भगवान अर्जुन को यह बता रहे कि अर्जुन देखो ये लोग सब जो एकत्रित हुए हैं तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन देखो ये सारे योद्धा जो एकत्रित हुए हैं ना, इनके मन में एक चीज निश्चित है, दुर्योधन अकेला है जो इस भ्रम में है कि वो जीतेगा, बाकी सब जानते हैं कि वो हारने वाले हैं। हाँ? भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं बाकी सब जानते हैं कि वो हारने वाले, क्यों, क्योंकि तुम युद्ध मैं यहां पर सबसे आगे लड़ने वाले हो और मैं तुम्हारे साथ हूं और भीम है, युधिष्ठिर इत्यादि, तो बाकी सब जानते हैं कि वो हारने वाले, तो क्यों आए हैं वो यहां पर, क्योंकि वो मरना चाहते हैं इस युद्ध में, क्योंकि इस युद्ध में वो मरेंगे तो उनको सबको स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली, तो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए वो लोग सब यहां पर आए, और तुम पूरा ही युद्ध ही नहीं करोगे तो उनको कहां अवसर मिलेगा स्वर्ग जाने का। देखो बहुत सटल पॉइंट है भगवान का कि उनको कहां अवसर मिलेगा स्वर्ग जाने का, और यदि उनको अवसर नहीं मिला स्वर्ग जाने का तो होगा क्या कि वो लोग आए तो उस इच्छा से, और तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम उनकी वो इच्छा मार रहे हो, तो वो उस इच्छा को पूरी करने के लिए पता नहीं और क्या क्या करने के लिए जाएंगे वो लोग, जो कि उनके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। जैसे कि आपने कभी इस चीज का अनुभव किया, आपको जस्ट छींक आ रही है हा? और फिर वो आते आते रुक जाती, अनुभव किया? जैसे आप किसी मीटिंग में बैठे हो, अचानक आपको छींक आ रही, तो सबको आप बोले एक मिनट, और सब लोग ध्यान से देखते हैं, फिर अचानक चली गए स्फूर्ति के लिए। तो भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि तुम इनको यहां तक लाए, वो छींक आई, उसके बाद में तुम बोल रहे हो प्रथम अध्याय में कि अब उनकी छींक को वापस भेज दो, वो ठीक नहीं, छींकने दो उनको, अच्छी से आने दो यहां पे, हारने दो, मरने दो, स्वर्ग की प्राप्ति उनको करने दो, और स्वर्ग की नहीं, वो मेरे सामने मरेंगे तो उनको मुक्ति होगी, मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए अर्जुन के एक्शंस, अर्जुन के वर्ड्स इस प्रकार से बुद्धि भेद कर रहे थे। तो आज के श्लोक में जो हमने थीम लिया, क्या, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम एक बैलेंस्ड अप्रोच लो। तो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, इसमें हम देखें कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे आज के श्लोक का पालन करते हैं। हालांकि आज का श्लोक बहुत फिलोसॉफिकल लेवल पर है, लेकिन उस फिलोसॉफी को प्रैक्टिकली हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे फॉलो करते हैं। पहला उदाहरण, ईटिंग वर्सेस इवैक्यूएटिंग। अगर हम इसमें थोड़ा भी एक्सट्रीम में चले जाएं किसी एक डायरेक्शन में तो प्रॉब्लम हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हम पचा सके। अगर कल रात का भोजन पचा नहीं है तो आज मत डालो। और प्रॉब्लम क्या होती है कलयुग में कि 3 दिन 10 दिन का पचा नहीं है, ऑलरेडी वहां सड़ रहा है, उसके ऊपर और डालते रहो और डालते रहो। ईटिंग इज इंपॉर्टेंट एंड इवैक्यूएटिंग इज ऑपोजिट ऑफ ईटिंग। खाना और मल विसर्जन करना, इवैक्यूएटिंग मतलब मल विसर्जन करना, दोनों ऑपोजिट है। जैसे हमारे संता सिंह को पूछा गया, संता सिंह को पूछा गया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये मतलब एक मेडिकल स्कूल में उन्होंने प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एक्सप्लेन किया एक लाइन में, इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट हैंड एंड्स विद लेफ्ट हैंड। बहुत ही एलोक्वेंट एक्सप्लेनेशन था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का। तो देखिए दोनों ऑपोजिट हैं, राइट लेफ्ट हैंड, लेकिन दोनों आवश्यक है। तो बैलेंसिंग, अगर उसमें बैलेंसिंग नहीं होगा तब फिर प्रॉब्लम शुरू होगी। आ जाइए एग्जाम्पल वापस आ जाइए, स्लीपिंग वर्सेस वर्किंग। अब अगर किसी ने सोचा कि भाई काम करना काम करना काम करना सबसे आवश्यक है, कर्म ही पूजा ये वगैरह इत्यादि, लेकिन अगर वो आराम नहीं करेगा तो फिर वो जो कर्म कर रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे। और अगर खाली सोता रहे तो कि अरे सोना जरूरी है, तो फिर अगर सोता रहे तो भी प्रॉब्लम। तो इसके अंदर हम कैसे रोज बैलेंस करते हैं, फिर वर्किंग और रिक्रिएशन, खाली काम करते रहे करता रहे करता रहे। वो क्या कहते हैं, कौन सा वो सेइंग है, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो वर्क वर्सेस रिक्रिएशन और अर्निंग वर्सेस स्पेंडिंग। यदि कोई अपने घर के फाइनेंसेस को सही तरीके से बैलेंस करना चाहता है, अब वो अर्न कर रहा है किस लिए, खर्च करने के लिए ना। तो अगर वो ये सोचे कि भाई मैंने पहले दिन महीने की पहली तारीख को उसको जो पगार मिली, तो पगार जो घर पे लेके आया किस लिए, खर्च करने के लिए। जैसे एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा, उसने फोन कर बोला कि आई सॉ योर वैलेट वॉज बिकमिंग वेरी फैट, आई सो आई टुक इट फॉर एक्सरसाइज। तुम्हारा बटवा बहुत मोटा दिख रहा था तो उसको थोड़ा पतला करने के लिए एक्सरसाइज के लिए बाहर लेके गए। तो जो स्पेंडिंग और अर्निंग है वो दोनों के अंदर अगर बैलेंस नहीं हुआ तो फिर अर्निंग का फायदा क्या और फिर स्पेंडिंग का फायदा। तो ये रोजमर्रा के कुछ एग्जांपल्स है जहां पर हम देखते हैं कि कैसे हम आज के श्लोक को फॉलो कर रहे हैं, और आज के श्लोक को अगर ये हमारे दिनचर्या में हम अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे, जिसको कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार इम्बैलेंस इन द दोषस, तो वैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी प्रॉब्लम आता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थोड़े और सटल हैं, जिसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ सम थिंग्स। पहला एग्जाम्पल है अ व्हील। आपने देखा होगा बैलगाड़ी का पहिया होता है, चक्का होता है, या जो भी साइकिल का स्पोक्स होते हैं उसमें, है ना। तो बताया गया है कि एक व्हील या चक्के के अंदर का जो स्ट्रेंथ उसको कहां से मिलता है, जो स्पोक्स होते हैं केवल उससे नहीं, स्पोक्स के बीच में जो स्पेस है, दो स्पोक्स के बीच में जो स्पेस है अगर वो बैलेंस्ड ना हो तो वो चक्का उसमें डेंट आ सकता है। अब देखिए कि जो स्पेस है और जो स्पोक्स है दोनों ऑपोजिट लग रहे हैं, है ना, लेकिन उस चक्के में स्ट्रेंथ आता है वो दोनों ऑपोजिट्स जो हैं उसके बैलेंस में ही। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में भी दोनों चीज का बैलेंस होगा कि क्या चीज से हमको जुड़ना है क्या चीज से हमको छूटना है, इसका बैलेंस अगर हो तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरा एग्जाम्पल एक दीवार का है। आप देखोगे कि एक दीवार, यहां पर सीधी दीवार दिख रही होगी आपको, लेकिन ये दीवार के बीच में पिलर्स है और उसको स्ट्रेंथ दीवार को कहां से मिल रही है, स्पेस बिटवीन द पिलर्स, पिलर्स का जो स्पेसिंग हुआ है उसके अनुसार इस दीवार को उस प्रकार की स्ट्रेंथ मिलती है। तीसरा एग्जाम्पल म्यूजिक का है। आप देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट, या चाहे हारमोनियम हो या सिंथेसाइजर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब कोई म्यूजिशियन बजाता है तो एक तो म्यूजिकल नोट्स होते हैं और म्यूजिकल नोट्स के बीच में जो पॉज होता है जिसके अंदर कोई म्यूजिक नहीं होता, साइलेंस होता है, वो जरूरी है। उस म्यूजिकल नोट्स को सही तरीके से बजाने के लिए दो म्यूजिकल नोट्स के बीच का जो साइलेंस है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि म्यूजिक निकालना बाहर, जितना साउंड वाइब्रेशन बाहर निकल। तो ये तीन चीजों से समझ में आता है कि स्ट्रेंथ कहां से मिल रहा है, बैलेंसिंग से। अब आज के श्लोक के अनुसार क्रमिक कृष्ण भावनामृत में वृद्धि, प्रभुपाद ने कितने अपने लेक्चरों में और मॉर्निंग वॉक कॉन्वर्सेशन में कहा कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ग्रेजुअल डेवलपमेंट। और प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है और उसको कोई शिशु चाहिए तो उसको क्या करना है, 9 महीने प्रतीक्षा करना है और 9 महीने प्रतीक्षा करने के पश्चात फिर उस माता को वो जो शिशु सही रूप में स्वस्थ तरीके से उपलब्ध होके आएगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज लाइक दैट। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया था, इफ अ लेडी इमीडिएटली आफ्टर मैरिज शी डिमांड्स आई वांट अ चाइल्ड, प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया, नो, शी हैज टू वेट फॉर 9 months। सो वी कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस इमीडिएटली। कई लोग होते ना, बताओ भगवान दिखा, भगवान दिखाओ, तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि जो आके सीधा ये डिमांड करते हैं कि भगवान दिखाओ फिर मैं जप करूंगा, तो ये हुआ कि कोई बोलता है पहले बच्चा दिखाओ फिर शादी करूंगा, रिडिकुलस, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। दूसरा उदाहरण, अब यहां पर इस चित्र को ध्यान से देखिए कि जो पीछे स्ट्रॉबेरी दिख रहे हैं आपको वो कौन से कलर के, ग्रीन, और यहां सामने जो स्ट्रॉबेरी दिख रहा है रेड। स्ट्रॉबेरी कौन से कलर के होते हैं, कैसे पता, ग्रीन भी हो सकते, हाँ, पीछे वाले कच्चे हैं आगे वाले पके हुए हैं, है ना, गुड आंसर, सही बात है। तो अब उसको अगर लाल करना है पीछे वाले को तो पेंट वगैरह लगा के करे लाल, वो भी एक तरीका है कि वो दूर से दिखाई देगा कि वो भी लाल हो गया। उसको ज्यादा अच्छा पेंट कर सकते हैं हम, ज्यादा एशियन पेंट्स यूज कर सकते हैं जो प्रीमियम क्वालिटी का, वो सब लगा सकते हैं, पहले वाले से जो सामने वाला दिख रहा है उससे ज्यादा अच्छा रेड कलर कर सकते हैं, नहीं वो तरीका नहीं है, वो जो पीछे वाला स्ट्रॉबेरी जो ग्रीन है उसको लाल करने के लिए क्या करना है, वेट करना, वेट करते करते समय क्या करना है, ये नहीं कि अभी बैठे वेट कर रहे, वेट करते समय उसको पानी डालते रहो, कोई कीड़े नहीं लग रहे वो देखो, उसको बोलते हैं कल्टीवेशन, वाइल वेटिंग कल्टीवेटिंग, और उसको वहां लटके रहने दो। अगर किसी ने सोचा कि अरे मैं इसको अच्छी से घर में अपने बेडरूम में रख के अच्छी से उसको पानी देता हूँ तो तोड़ के लेके आ जाता है घर के अंदर, फिर उसको अच्छी से कांच के शीशे के अंदर का, फिर उसको पानी डालता है। नहीं, उसको एक तो वहां लटके रहना चाहिए और वहां उसका कनेक्शन युक्त, जिसको आज भगवान कह रहे हैं। सो यू हैव टू बी कनेक्टेड एंड यू हैव टू हैव पेशेंस। तो जैसे हम साधना भक्ति कर रहे हैं इस्कॉन के अंदर, तो हमको करना क्या है कि इस्कॉन ये स्ट्रॉबेरी के पेड़ के समान है और हम लोग कौन है, कच्चे कच्चे स्ट्रॉबेरी, अभी हरे हैं, कई तो बाहर भी नहीं निकले अंडे से, जो भी हो उसके बड़ से। तो वो कच्चे स्ट्रॉबेरी को करना क्या है कि उसको वहां लटके रहना है, तो हमको भी इस्कॉन में लटके रहना है। जैसे बॉम्बे की लोकल ट्रेन में यदि आपको विरार से चर्चगेट पहुंचना है, लटके रहो बस, अपने आप अगर लटके रहोगे तो अपने आप वहां पहुंच जाओगे और वहां पर लोग भी उतार देंगे आपको नीचे, आपको खुद भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो वैसे ही इस्कॉन लोकल ट्रेन के समान लटके रहो, इतनी भीड़ है कि वो जब आपको जहां उतरना होगा, वो जहां चाहेंगे वैकुंठ धाम, आप आपको उतार देंगे वो लोग। और वो स्ट्रॉबेरी के समान वहां पे हम लटके रहें तो वो पेड़ के अंदर, और केवल लटके नहीं रहना है हमको, फिर ऐसे माली को समर्पित होना है कि जो हमको कल्टीवेट करे, देखे कि कीड़े नहीं लग रहे। कीड़े कौन है? असत्संग, कि हमको कीड़े नहीं लग रहे और फिर पानी नियमित रूप से मिल रहा है कि नहीं। और पानी क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है विधि, और निषेध क्या है? चार नियम। तो चार नियम निषेध है और ये विधि। तो जैसे ये कल्टीवेशन में भी विधि निषेध आता है ना, कि किस चीज को अवॉइड करना, कीड़ों को अवॉइड करना, पानी को डालना उसके बाद भी वेट, इतना करने के बाद भी जब तक कि वो अपने समय और मौसम के अनुसार वो नहीं पकता। इसलिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वो एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि जो सहजिया होते हैं, जो अपने आप को इमेच्योरली बहुत मेच्योर्ड मानते हैं, अनटाइमली मेच्योर्ड मानते हैं, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो कैसे हैं कि कैरी को तोड़ के लाएंगे और उसको मार मार के नरम बनाएंगे, क्योंकि आम नरम होता है। तो कैरी को तोड़ के लाया किसी ने और उसको जोर से डंडे से मार मार के उसको बोल रहा है कि तू नरम बन, क्योंकि आम जो नरम होता है कैरी की तरह कड़क नहीं होता। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जो सहजिया होते कैरी के समान खट्टे, लेकिन अपने आप को बहुत प्रगत दिखाना चाहते हैं तो मार मार के कैरी को आम बनाना चाहते हैं, ये गलत तरीका है। तो भगवान बता रहे हैं कि, और श्रील प्रभुपाद का आज के श्लोक का अनुवाद क्या है, जिससे तुम एक तो बुद्धि भेद मत करो अर्जुन जनता के अंदर, और ये सिखाओ उनको अपने उदाहरण से कि कृष्ण भावनामृत की वृद्धि क्रमिक ग्रेजुअल है, ये उनको बताओ, एक्सट्रीम्स में मत जाओ। तो डवटेलिंग, प्रभुपाद ने जो एक और एग्जाम्पल यूज किया, क्या? कृष्ण कॉन्शियसनेस इज आर्ट ऑफ डवटेलिंग। डवटेलिंग का अर्थ प्रभुपाद ने ये दिया कि यदि किसी के अंदर कुछ गुण हैं, एक तो गुण किसी के अंदर और किसी के अंदर कुछ करने की इच्छा, वन इज स्किल एंड अदर इज प्रोक्लिविटी, इन दोनों चीजों को स्किल एंड प्रोक्लिविटी, प्रभुपाद ने कहा इन दोनों चीजों को उनको मारने के लिए या खत्म करने के लिए मत बोलो, उसको कैसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है ये सिखाओ, इसको डवटेलिंग। इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद अमेरिका जाकर, प्रभुपाद ने वहां पर उनको ये नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ो। प्रभुपाद ने उनको ये नहीं कहा कि खाना बंद करो, मैं बताता हूं क्या खाना चाहिए। ये नहीं कि तुम गाना बंद करो, मैं बताता हूं क्या गाना चाहिए। श्रृंगार करना बंद मत करो, ये मैं बताता हूं कि किसका श्रृंगार करना चाहिए। बोलना मत बंद करो, मैं ये बताऊंगा क्या बोलना चाहिए। घूमना बंद मत करो, ये मैं बताऊंगा कहां घूमना चाहिए, क्यों घूमना चाहिए। दिस कॉल्ड डवटेलिंग। तो प्रभुपाद वो एक्सपर्ट विद्वान थे जो जानते थे कि कैसे व्यक्तियों के आसक्तियों को कृष्ण भावनामृत में परिणित करना। दैट वॉज द एक्सपर्टीज ऑफ प्रभुपाद, डाउटेलिंग एवरीवन्स प्रोपेंसिटी एंड स्किल्स एंड एक्सपर्टीज इन नॉट सिंपली प्लीजिंग कृष्णा बट लिबरेटिंग देम थ्रू दैट। इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ डाउटेलिंग। और आज का अंतिम शब्द समाचरण, सम्यक आचरण, संपूर्ण रूप से आचरण करना। तो संपूर्ण रूप से आचरण का अर्थ है कि अपने आचरणों के द्वारा जब हम जन साधारण के अंदर, बुद्धि भेदम तो छोड़ दीजिए, उनके अंदर हम भगवान श्री कृष्ण और उनके संदेश को इंस्टॉल करते हैं, इसको बोलते हैं समाचरण। तो इसके कुछ उदाहरण हम लेंगे शास्त्र से। सबसे पहला उदाहरण समाचरण का है कर्दम मुनि। बहुत ही सुंदर उदाहरण है श्रीमद् भागवत से। कर्दम मुनि और उनकी पत्नी देवहूति ऐसे भक्त भगवान के कि इनकी भक्ति के वजह से भगवान स्वयं इनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए, कपिल मुनि। अब देखिए कर्दम मुनि जैसे ही कपिल मुनि पैदा हुए तो कर्दम मुनि ने सन्यास लिया। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि सन्यास क्यों बताया गया है शास्त्रों में, ताकि उसे भगवत प्राप्ति हो। अब यहां पर जिसके पुत्र ही भगवान हैं तो सन्यास लेने की क्या जरूरत है कि नहीं। ये तो ये हो गया कि किसी को 1 करोड़ की लॉटरी लगी और वो नौकरी पर जा रहा है, कि भाई तुमको, तुम नौकरी पर क्यों जा रहे हो, पैसे कमाने के लिए, तुमको यहां पर 1 करोड़ की लॉटरी लगी। तो कर्दम मुनि को लॉटरी लगी थी कि जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग सन्यास लेते हैं वो भगवान उनके पुत्र के रूप में उनके घर में अवतरित हुए। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कर्दम मुनि ने सन्यास क्यों लिया, चिकीर्षु लोक संग्रह, सिखाने के लिए कि क्या एक गृहस्थ का कर्तव्य होना चाहिए 50 वर्ष या उसके उपरांत, वानप्रस्थ और सन्यास क्या होना चाहिए। कि सोचो इतना एक्सट्रीम एग्जाम्पल है ये कि भगवान पुत्र के रूप में आने के पश्चात भी उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई ताकि जन साधारण में वो बुद्धि भेद न करें। दूसरा उदाहरण श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का है कि भक्ति विनोद ठाकुर, उनका गृहस्थ जीवन ऐसा कि बताया गया है कि जब वो घर आते तो उनको गोलोक वृंदावन दिखता अपने घर में, ऐसा उनका घर, ऐसा उनका सब कुछ, उनका पूरी दिनचर्या अगर आप पढ़ोगे तो उनकी पूरी दिनचर्या ऐसी कि एक सन्यासी भी उनके सामने फेल हो जाए। और भक्ति विनोद ठाकुर के 10 बच्चे थे, ऐसे गृहस्थी और मैजिस्ट्रेट बहुत बड़े और इतनी पुस्तकें जिन्होंने लिखी, और उनका जीवन एक विरक्ति और सन्यासी से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट उनका दिन होता था। और ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर के घर में गौर किशोरदास बाबा जी जैसे बड़े वैरागी आके संग लेते थे उनका। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने भी आगे चलकर बाबा जी वेश या सन्यास लिया, क्यों, समाचरण, चिकीर्षु लोक संग्रह, कोई आवश्यकता नहीं थी, जिनका जीवन ही एक सन्यासी और विरक्ति से ज्यादा भगवान में आसक्त था, फिर भी उन्होंने लिया। और फिर उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभु का कि साक्षात भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कलयुग में अवतरित होकर संन्यास लिए, क्या जरूरत है उनको संन्यास लेने की। उनका भी सच्ची माता जैसी माँ, विष्णु प्रिया ऐसी जो साक्षात लक्ष्मी, ऐसी पत्नी, कौन इनको त्यागेगा। लेकिन क्यों उन्होंने किया, यही समाचरण सिखाने के लिए। श्री हरिदास ठाकुर का भी बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि हरिदास ठाकुर है कौन, स्वयं ब्रह्मा जी हो, स्वयं ब्रह्मा जी चैतन्य महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर के रूप में अवतरित हुए। और मैं इनके विषय में सोच रहा था कि हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में अक्सर वो रहते और उनकी भजन कुटीर वगैरह समाधि सब जगन्नाथपुरी में। तो हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में, सोचिए ब्रह्मा जी हैं कौन, ओरिजिनल ब्राह्मण, ओरिजिनल ब्राह्मण है ब्रह्मा जी, लेकिन हरिदास ठाकुर के रूप में वो एक यवन परिवार में पैदा हुए। और यवन परिवार में पैदा होने के वजह से उनको जगन्नाथपुरी में एंट्री नहीं थी, जगन्नाथ जी का दर्शन हरिदास ठाकुर नहीं कभी कर सकते थे। जो नामाचार्य बने वो हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ जी के मंदिर में एंट्री नहीं थी, क्योंकि वो यवन परिवार में पैदा हो। तो इसके विषय में मैं सोच रहा था कि जगन्नाथ जी की स्टोरी अगर आप पढ़ोगे, सत्युग की स्टोरी, तो सत्युग में जगन्नाथ जी के डीटी इंस्टॉलेशन किसने किया पता है आपको? जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ जी हैं, उनका डीटी इंस्टॉलेशन ब्रह्मा जी ने किया। तो जिन ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ जी का डीटी इंस्टॉलेशन किया, वो हरिदास ठाकुर के रूप में उनको उस मंदिर में एंट्री नहीं। तो हरिदास ठाकुर तो सबको जाके उधर बोल सकते थे कि तुमको शर्म आती कि नहीं आती, मैंने ये जगन्नाथ जी का इंस्टॉलेशन किया है और तुम मेरे को एंट्री नहीं दे रहे। हरिदास ठाकुर जानबूझ के नहीं जाते थे, वो उस गली से भी जो सिंह द्वार है उसके सामने से भी नहीं गुजरते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि नहीं, मैं वहां से नहीं गुजरूंगा, क्योंकि जगन्नाथ जी के पुजारी अगर मेरे को स्पर्श कर लेंगे तो वो दूषित हो जाएंगे और जगन्नाथ जी की पूजा शुद्ध तरीके से नहीं हो पाएगी। ये है समाचरण हरिदास ठाकुर का, स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी जिन्होंने जगन्नाथ जी का इंस्टॉलेशन किया, वो अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि क्या आचरण होने चाहिए, नम्रता किसे कहते हैं। और अंत में हमारे श्रील प्रभुपाद, ये श्रील प्रभुपाद फाउंडर आचार्य इस्कॉन के, सोचिए। और इस्कॉन के जितने भक्त उनको स्पून फीडिंग कर उनको, कई एक सन्यासी बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ने हमको जैसे नाली के कीड़े को बाहर निकालते हैं, वैसे हमको इस भौतिक संसार की नाली से बाहर निकाला, हमको साफ किया, हमको एक वैष्णव बनाया। और फिर प्रभुपाद अपने ही शिष्यों के क्लासेस में आके बैठते थे, जिन शिष्यों की बुरी लत छुड़ाई प्रभुपाद ने, जिनको सिखाया कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, जो कि सब कुछ ABCD जो भक्ति की सब कुछ सिखाए, प्रभुपाद उनके ही क्लासेस में जाके बैठते थे, उनके ही क्लासेस को सुनते थे। तो प्रभुपाद को भक्त पूछा करते थे कि प्रभुपाद आप फाउंडर आचार्य हो इस्कॉन के, तो प्रभुपाद कहे इफ आई डू नॉट डू देन पीपल विल जस्ट फॉलो माय एग्जांपल। तो प्रभुपाद स्वयं अपने उदाहरण से सिखाए कि सम्यक आचरण क्या होता है, या चिकीर्षु लोक संग्रह क्या होता है। तो आज के श्लोक के द्वारा भगवान ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि अर्जुन तुम बहुत महत्वपूर्ण योद्धा हो, न केवल तुम महत्वपूर्ण योद्धा हो बल्कि पूरी सृष्टि में तुम एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, क्योंकि तुम मुझसे कनेक्टेड हो। युक्त समाचरण, तुम मुझसे कनेक्टेड हो, तुम्हारा कनेक्शन किससे? मुझसे है। तो लोग ये देखेंगे कि यदि जो भगवान कृष्ण से कनेक्टेड है अगर वो अपने ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर भाई हम लोग क्यों करें? इसलिए तुम उनके अंदर बुद्धि भेद न करते हुए अपने उदाहरण से कर्म करो, उनको बताओ कि कर्म कैसे किया जाता है, कर्म क्यों करना चाहिए और कर्म किसके लिए करना चाहिए। ये सिखाते हुए तुम अपने गांडीव को उठाओ और भगवान आज के श्लोक के द्वारा अर्जुन को द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, द आर्ट ऑफ डव टेलिंग ये सिखा रहे हैं। तो ध्यान में रखना कि अर्जुन को भगवान बता रहे हैं बिकम अ सॉल्ट शेकर, जितना नमक निकालना है उतना ही नमक बाहर निकालो, जितनी आवश्यकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब अगला एक श्लोक इस तीसरे अध्याय का एक और बहुत क्लासिक श्लोकों में से एक है, प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। बहुत ही फेमस, प्रभुपाद ने बहुत लेक्चर्स दिए श्लोक के ऊपर। तो अगला जो श्लोक है 27वां, इसमें अहंकार के कारण जीव कैसे मूर्ख बनता है, क्योंकि इसमें भी कनेक्शन है पिछले दो श्लोकों से, आज के श्लोक से। क्या है? अगले बुधवार को इसी समय इसी जगह पर आप लोग आ जाइए, इस पर हम चर्चा करेंगे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।